देवियों, सज्जनों, स्वामी दयानंद जी लिखित आर्योदेश्य रत्नमाला में से आज का जो सब्जेक्ट है वो है संस्कार, सैक्रमेंट्स। संस्कार के तो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक संस्कार जो हम काम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में जो कोड होता है, जो सेविंग होता है, उसे भी संस्कार कहते हैं, जो आपके लाइफ को, आपके फ्यूचर लाइफ को आगे जाकर क्या करेंगे उसको डिसाइड करता है। जिस संस्कार की हम बात कर रहे हैं वो रिचुअल्स हैं। हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार, जो 16 सैक्रमेंट्स हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, न कि कर्म संस्कार के बारे में। तो संस्कार लिटरेरी मीनिंग होता है प्यूरिफिकेशन, जिसको प्यूरिफाई किया जाए वो संस्कृति हो जाती है। जैसे कि हम बात बात पर कल्चर का दुहाई, कल्चर को हिंदी में, संस्कृत में, इंडियन लैंग्वेज में संस्कृति बोलते हैं, जिसका कि हम बहुत मिसयूज करते हैं संस्कृति नाम का। हो सकता है अनजाने में या बहुत सारे मिसपरसेप्शन है। संस्कृति की सिंपल मीनिंग है, किसी भी सिविलाइजेशन में जो चीजें प्यूरिफाइड हो गए हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो कल्चर्ड हो चुके हैं, वो सब संस्कृति होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके घर में आप भूत की पूजा करते हो तो वो आपकी संस्कृति है, वो तो आपकी ट्रेडिशन है। परंपरा जो होता है, जो ट्रेडिशन होता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि ये ठीक है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, सही है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो तो हम करते हैं क्योंकि मेरे माँ बाप करते थे, उनके माँ बाप करते थे, उनके माँ बाप करते थे, इसलिए मैं करता हूं। उसे संस्कृति नहीं कही जाती है, उसे ट्रेडिशन, परंपरा कही जाती है। जैसे स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि किसी के घर में किसी का पिता का देहांत हो गया तो वो अपने घर में श्राद्ध करता था। श्राद्ध मतलब जो डेथ एनिवर्सरी, उसमें बहुत सारी जो आर्य समाज आते हैं उनको कम पता होगा, पौराणिक लोग उनको ज्यादा पता है। वो घर में वो पिंड देते हैं आत्मा के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उनके घर में एक बिल्ली हुआ करती थी, साल में तो और कुछ करते नहीं थे, पिताजी की श्राद्ध होता था तो उसी को करते थे। डेथ एनिवर्सरी में पंडित जी आते थे, बड़े सारे तामझाम होता है। वो बिल्ली तंग करती थी क्योंकि जो खाना वगैरह बना होता था पिंड देने के लिए, ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, तो वो मुंह मार देती थी। तो वो क्या करते थे, बिल्ली को पकड़ के उसके एक टोकरी, उसके ऊपर बास्केट जो है डाल देते थे, जिससे कि वो भागे नहीं, इधर उधर मुंह ना मारे। आपके घर में भी कभी कोई हवन वगैरह होता है, आपके घर में कोई पेट कुत्ता है, कुछ है, तो आप उसको कोई दूर बांध देते हो, तो वो उसमें टोकरी डाल देते थे। तो और ये ऐसी चलती रही सालों साल, जब भी उनके घर में श्राद्ध होता था तो बिल्ली को वो टोकरी डाल देते थे। बच्चे उसी को देखकर बड़े हुए और अचानक करने वाला व्यक्ति खुद ही चल बसे। तो बच्चे अब बड़े होंगे और बच्चों की जिम्मेदारी है अपने पिता की श्राद्ध करना। कोइंसिडेंटली पंडित जी भी बदल चुके थे, नए पंडित थे। नए पंडित ने लिस्ट भेजा, उसमें नहीं लिखा था बिल्ली और टोकरी। लड़के ने पूछा, कैसा नालायक पंडित हो, तुझे जो कुछ आता ही नहीं है, क्यों कि तुझे पता ही नहीं श्राद्ध में बिल्ली को टोकरी से ढकी जाती है, ये तो हमने सुना नहीं, तो कैसा हो, ये तो हमारी ट्रेडिशन है, मुंह के बिना कैसे श्राद्ध करेंगे। चलो पंडित जी को क्या जाता है, पैसे लेने से मतलब है, जो मर्जी खुश हो उससे। लिख दिया एक टोकरी एक बिल्ली, श्राद्ध हुआ, बिल्ली किराए पर लाई गई पड़ोस से कहीं से उठा के, टोकरी लाई गई, बिल्ली को ढकी गई, फिर श्राद्ध का कर्म हुआ। जब कोई चीज बिना समझे बुझे किया जाए, दैट्स योर ट्रेडिशन, आप उसे प्राउड फील करो ना करो, इट्स योर प्रॉब्लम। मेरे लिए वो फिल्थी लगे, गंदा लगे, आपको प्राउड फील होता है, दैट्स अप टू यू, बट इट्स नॉट कल्चर। जी हमारे कल्चर में तो ये नहीं है, लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, इट्स नॉट योर कल्चर। हमारे कल्चर में तो ये होता है, हमारे लड़कियां झुकती नहीं है, पैर नहीं छूती हैं, है ना। किसी के कल्चर में लड़की बाहर नहीं जाती है, किसी के लड़की में पैर नहीं छूती है, इट्स नॉट योर कल्चर, इट्स योर ट्रेडिशन। कल्चर वो होता है जो कल्चर्ड हो चुका होता है, जो प्यूरिफाइड हो चुका है। हमारे लिए शब्द है संस्कृति, जो सही और अच्छा समझ के जिसको चुना जा गया है, जिसको जो हमारे और सबके लिए अच्छा है। तो टेक लिटरेरी मीनिंग होता है संस्कार, संस्कार से जुड़ी हुई संस्कृति। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, जब मैं यंग था तो संस्कृत प्रचारक करते थे, तो एक जगह गए कहीं, तो उनके ऑफिस में एक क्लर्क थे, बुजुर्ग थे, धोती पहनते थे, दाढ़ी वगैरह छोड़ रखा था, वैसे ही उनका शौक होगा। मैं पैंट शर्ट पहन के बैठा गया था, इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर उनसे बात कर रहा था, बगल में बैठे थे, संस्कृत में बोल रहा था, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे पर, संभाल नहीं पाए, 10-15 मिनट के बाद वो फूट पड़े, कैसा संस्कृत प्रचार को, कोई संस्कृति नहीं, कल्चर, उनका क्या खराब हो गया, कौन सी भाषा में क्या है, पैंट शर्ट पहन करके आते हो और करते हो संस्कृत का प्रचार, कौन सी संस्कृति है, आपको पता है जो आर्य समाज के बैकग्राउंड के होते हैं उनकी बुरी आदत होती है, कोई कुछ बोले वो उसको जवाब दिए बिना जाते नहीं, वैसे नहीं बोलते, मैं भी कोशिश करता हूँ बिना पूछे किसी को कुछ ना बताऊं, पर कोई पूछे तो फिर तो बताना पड़ता ही है। तो हमने बताया कि बता दीजिए संस्कृति क्या चीज है, आप बुजुर्ग आदमी है, देखा बदतमीजे लड़के आजकल के जवाब देते हैं, ये भी संस्कृति में लिखा है कि बड़े बुजुर्गों की बोलने का हक है, बच्चों का बोलने का हक नहीं, ये तो समझा लीजिए, जो धोती कुर्ता पहने वो कब से भारत की संस्कृति बोली ये समझा दीजिए, वो अच्छी बात ये है कि हम तो वो पेड़ों की छाल पहनते, ये हमारी असली संस्कृति थी, क्योंकि ये हमारा ओन इन्वेंशन था, हम तो यही पहनते चले आ रहे थे, धोती कुर्ता तो विदेशियों ने ये ज्ञान दिया, मशीन लाए, कपड़े बुनो सिलो, और कुर्ता तो मुगलों की मुसलमानों की कल्चर है, आज भी साउथ इंडिया में मंदिर जाओ वो सीधा धोती पहनते हैं और ऊपर एक सिला सिलाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलाई का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है भाई, देख रहे हैं आप किस किस की कल्चर को आप अपना बोल के बेच रहे हैं। तो बोले जो मैंने पूछा जिस चेयर और टेबल पर बैठे हो बता दो ये कौन सी भारतीय संस्कृति है, जिस पंखे से हवा खा रहे हो ये कौन सी भारतीय संस्कृति है, जिस पेन को पकड़ बैठे वो कौन सी भारतीय संस्कृति है, जरा समझाते चलो, मैं तुम्हारे से छोटा हूं समझते जाऊं। देवियों सज्जनों, मैंने इसीलिए कहा कि बहुत सारे कल्चर के नाम पर हम अपनी इग्नोरेंस पर प्राउड फील करते हैं और दूसरों को थोपते हैं या जज करने की कोशिश करते हैं, मेरी इच्छा में क्या पहनूं, आपको अगर पता है तो बहस करो, नहीं तो चुप रहो, जज करना बंद कर दो, इफ यू डोंट नो अबाउट इट। कहने का भाव थे बहुत सारे चीजें जो कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है, वो आपकी ट्रेडिशन है, किसी टाइम पीरियड में उसकी जरूरत थी, जब जरूरत थी तो वो उस समय की कल्चर थी, जब वो बिना समझे आपने उसको ब्लाइंडली यूज करना शुरू कर दिया, इट बिकम्स योर ट्रेडिशन, परंपरा। अगर आप एनालाइज करें आपके हर देश की सोसाइटी की जो संस्कृति है, सो कॉल्ड कल्चर है, आप देखेंगे 90% जो है वो नॉनसेंस है, जिसको कल्चर के नाम पर प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। हमारे यहां संस्कृति है बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, ये कोई कल्चर थोड़ी, ये आपकी सहूलियत है, आपकी ईगो को कोई ठेस ना पहुंचाए, आप किसी को कुछ भी बोलो, आपको कोई कुछ ना बोले, बच्चे को दबा के रखे हो, सप्रेस करके रखे हो, डंडा मार के रखे हो, इसलिए बोलने नहीं देते हो, दो तीन पीढ़ी के बाद कहते हो कि ये हमारी कल्चर बन गया है ना? बच्चा सिगरेट पिए छुपा के पिए तो कोई बात नहीं, शराब पिए बाहर पिए कोई बात नहीं, कुछ भी करे बाहर करे कोई बात नहीं, माँ बाप के सामने तमीज से रहना, अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है। बात समझ में आई, संस्कृति में और हिपोक्रेसी कैसे क्रिएट होता है। तो अब आते हैं असली चीजों पर, संस्कार टेक्निकली जो हम यूज करते हैं रिचुअल्स में वो है प्यूरिफैक्टरी सेरेमनीज, ऐसी सेरेमनीज जिसमें हम किसी को प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं मेंटली फिजिकली इंटेलेक्चुअली, एंड दैट व्हिच इंप्रूव्स द कंडीशन ऑफ द बॉडी माइंड एंड ऑल द सोल। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार 16 सैक्रमेंट्स की विधान है, और पता है कब से विधान, कब से शुरू करना चाहिए एक बच्चे का? बच्चा पैदा होने से पहले ही 4 संस्कार उसके होते हैं। जब माँ बाप पहली बार सोचे कि हमें एक बच्चा चाहिए, वहां से शुरू होती है पहला संस्कार आपकी जिंदगी, उसकी चर्चा हम बाद में करते जाए। स्वामी जी आगे एक चीज लिखते हैं जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, देयर आर 16 संस्कार बिगिनिंग विथ निषेक इम्प्रेग्नेशन। जब पति और पत्नी ये डिसाइड करें कि हमें बच्चा चाहिए, तो वो जो पहली बार आप बच्चा लाने के लिए जो संस्कार किया जाता है दैट इज कॉल्ड निषेक गर्भाधान संस्कार, और वहां से लेकर व्यक्ति की मौत जब हो जाए उसकी डेड बॉडी को जो रेस्पेक्टफुली उसका जब हम अंतिम विदाई करते हैं वो उसका अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। स्वामी जी कहते हैं उस व्यक्ति के जीवन में जब उसकी बॉडी को जला दिया जाए, क्रिमेशन हो जाए, उसके बाद कोई संस्कार का कोई मतलब नहीं होता है, ना हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई विधान है उसके बाद कोई आफ्टर डेथ कोई संस्कार होता है सिवाय अंत्येष्टि। So it says that it is everybody's duty to perform all these 16 sanskaras, but nothing should be done for the dead after cremation. अब आते हैं थोड़ा समझने के। तो संस्कार is a process of purification and transformation. देवियों सज्जनों, आपने कभी अपने और हमारे अपने बारे में नोट किया होगा, कुछ चीजें आप ऐसे करते हैं जो आप नहीं चाहते, आप जानते हैं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, आपको पता है गुस्सा करना बुरी बात है, बुरी बात दूसरों को, आप यू डोंट केयर अबाउट अदर, बुरी बात आपके लिए क्योंकि आपका बीपी हाई हो जाता है, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूं, अपने बारे में मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सेल्फिश होता है उतना ज्यादा अच्छा आदमी होता है, पर अगर स्मार्ट सेल्फिश हो ना कि स्टूपिड सेल्फिश। गुस्सा करने से आपको पता है कि आपका बीपी बढ़ता है, पर क्या करें हर बात पर आपको गुस्सा आता है, आपको पता है कि गलत बात बोलना, गालियां देना, बीच बीच में हर बात पर गाली के वर्ड यूज करना ये अच्छी बात नहीं है, पर क्या करें, आपके मुंह से निकल जाता है। आप तारीफ करने जाते तो भी दो लाइन सुनाकर गाल तारीफ करते। ठीक इसका उल्टा भी है देवियों सज्जन, बहुत सारे लोग हैं आप इनको आप थक जाओगे उनको गुस्सा दिला दिला के, उनको गुस्सा आएगा ही। ऐसा क्यों होता है कि मैं चाह कर भी गुस्सा नहीं कर पाता हूं और आप चाह कर भी गुस्सा रोक नहीं पाते हैं, मैं चाह कर भी अच्छा हो नहीं पाता हूं और आप चाह कर भी बुरा नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसी को कहते हैं संस्कार। जो हमने नोइंगली अननोइंगली जानकर अनजाने में हमने ऐसे बहुत कुछ किए जो धीरे धीरे हमारा हैबिट बन गया, आदत बन गया, और वो आदत भी इतना प्रबल हो जाए, इतना इंटेंस में आ जाए, इंटेंसिटी में, देन इट बिकम्स आवर नेचर। देयर इज नथिंग लाइक नेचर इन आवर वर्ल्ड, ह्यूमन बींग के नेचर, जिसको हम कहते हैं ना ये इस व्यक्ति का नेचर है, ये इस व्यक्ति का स्वभाव है, देयर इज नथिंग लाइक दिस, सब कल्टिवेटेड है, सब बनाया गया है। कभी कभी अननोइंगली हो सकता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा हो, अननोइंगली ये मेरे अंदर आ गया और मैं ऐसा ही हूं। हो सकता है मेरा फैमिली ऐसा नहीं, मैं जिस एटमोस्फियर में रहा, मेरे जो पीयर ग्रुप हैं, जो स्कूल के फ्रेंड हैं, कॉलेज हैं, नेबरहुड हैं, जिस तरह के मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, उनके साथ रहते रहते ही वैसे ही मैं हो गया, अच्छा या बुरा दोनों, मुंह में बात बात पर गाली निकालना या ओम निकालना जो भी निकालना, दोनों ही आदत है। वो आदत धीरे 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 अननोइंगली सबकॉन्शियस में हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, वो फिर हम कहते हैं ये तो मेरा नेचर, क्या करूं। इसलिए कोई भी नेचर ऐसा नहीं है जिसको बदला नहीं जा सके, कोई भी चीज अगर बनाया गया है वो जरूर नष्ट किया जा सकता है देवियों सज्जन, ये ध्यान रखिएगा। इफ इट इज मेड तो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। नेचर जो भी हमारा और आपका है कोई इटर्नल नहीं है। अगर मेरा कोई नेचर है मैं बदलना चाहता हूं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, मे बी इट इज डिफिकल्ट, क्यों, ये कल्टिवेट किया गया है मेरे जानकारी में या अनजाने में, मेरे नेचर में, मेरे व्यवहार में वो इंक्लूड हो चुका है। तो कोशिश कठिन होगा पर छोड़ा, आज तो ड्रग एडिक्टेड लोगों को भी लोग क्लियर कर देते हैं, आप इनको करेक्शन हाउस में लें तो धीरे धीरे वो सुन, पर आपके अंदर वो विल पावर होना जरूरी है कि मैं कुछ चीजें बदलना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं, इसको संस्कार कहते हैं देवियों सज्जन। एक दो उदाहरण दे करके आगे बढ़ते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, अब आप गैस नहीं डाल रहे किसी कारण से, तब भी आपकी चक्का चलता रहता है, चलता रहता है, गैस नहीं डाला, आप ब्रेक नहीं लगा रहे पर आप गैस नहीं डाल रहे तो भी कम से कम एक माइल तक तो आपकी गाड़ी चली जाएगी। इसको कहते हैं संस्कार। आप काम करना बंद कर लीजिए पर वो आदत ऐसी बनी हुई है कि आप वैसे बिहेव करते जाए। आप एक व्यक्ति को पैदाइशी बोलते रहिए कि तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, यकीन मानिए वो मूर्ख ही बनेगा, कुछ मत करिए, उसको खूब पढ़ाइए लिखाइए सब करिए, बस उसको ये बोलते रहिए कि तुम मूर्ख है, तुम मूर्ख है, तुम मूर्ख है, विल बी डम। हमारे यहां लड़कियों को पैदाइशी बताया जाता है, आज भी बताया जाता है भारत में, लड़की है, लड़की है, जी मैं ये पत्थर उठा दू तो लड़की है, इंजीनियरिंग पढ़ू तो लड़की है, आर्मी में जाऊं तो लड़की है, और लड़की ऐसी हो जाती है मक्खी भी बैठ जाए, रोते मम्मा मक्खी बैठ गई, छुई मुई सी बन जाए, कॉकरोच देख करके उछलती। आपको क्या लगता है ये सचमुच लड़की कमजोर होती है? तो फिर दुनिया भर में आजकल इतने सारे देशों के आर्मी में जो लड़कियां हैं, एक बार उनके सामने जाकर देखो, कुछ टोंट करके देखो, कुछ बोल के देखो, क्या आप क्या वो हालत करते हैं, पता चलेगा कि कितने कमजोर हैं। भारत में भी आजकल आर्मी में बीएसएफ में लड़कियां होती है और फ्रंट में रहती, कभी उनसे पंगा लेकर देखिए, पता चलेगा लड़की कितनी कमजोर है। भारत में नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वगैरह में कुछ ट्राइबल्स होते हैं, खासी ट्राइबल, जिसके बहुत फेमस लीडर हुए भारत में संगमा, आईपी संगमा जो स्पीकर पार्लियामेंट रहे, उस कम्युनिटी में वो महिला डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहां लड़के शादी करके लड़की के घर आते हैं, बच्चा पैदा करने के बाद पालने की पूरी जिम्मेदारी पुरुषों पति की होती है, पत्नी जो भी बाजार करना हो, मार्केट जाना हो, कोई भी काम करना हो पत्नी करती है, घर की मुखिया डिसीजन लेना वो पत्नी करती है। वहां जाकर देखिए पति कैसे पत्नियों के गुलाम बने, कुछ नहीं करता। क्योंकि पुरुषों के दिमाग में डाला जाता है पैदाइशी, तो पुरुष है तो पुरुष है तो पुरुष है, तो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर डालता है। जहां स्त्रियों को बताया गया कि तू कुछ भी कर सकता है, तो वहां स्त्रियां पुरुषों को डोमिनेट करके रखती है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, दैट्स गर्ल संस्कार। आप एक मूर्ख बच्चे को भी, जो आपको पता है कि ये टैलेंट नहीं है, किसी तरह आप डॉक्टर वगैरह से पता कर लीजिए, और आप उसको हमेशा मोटिवेट करिए कि यू आर टैलेंटेड, यू आर टैलेंटेड, यू आर टैलेंट, कुछ ना कुछ टैलेंट करके ही दिखाएगा। अब देखेंगे मोस्टली जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, मोस्टली आप यकीन मानिए 70% ऑफ देम आर नॉट टैलेंटेड। उनको भगवान ने कोई टैलेंट नहीं दिया था, वो कोई जैसे आप कहते ना 3-4 साल के बच्चे में सीख जाता है कि ये टैलेंटेड है कि इसमें बहुत, आपको 50-70% ऐसे ग्रेट पर्सन मिलेंगे जिनको कोई, उनको प्रारब्ध से उनको कोई टैलेंट नहीं मिला, वो अपने मेहनत से टैलेंट को इम्प्रूव बनाया और बहुत आगे। तो संस्कार जो आपने आपके जाने में अनजाने में जो रेगुलर आप हम करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, भोगते हैं, वो हमारे फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली वो हमारे नेचर का पार्ट बन जाए, फिर हम वैसे ही बिहेव करने लगे, सही ट्रीट करने लगे। वो संस्कार, अगर संस्कार इसका मतलब जो नेचर मेरा है, मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं जैसा भी हूं, अगर ये सिर्फ मेरा माइंडसेट है, तो उसको हम चेंज कर सकते। तो जो चेंज करने का प्रोसेस है हमारे ऋषि मुनि, उसको उस प्रोसेस को एक सैक्रमेंट कहते हैं और उसका नाम भी संस्कार होता है। द प्रोसेस ऑफ संस्कार हैज थ्री कंपोनेंट। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द संस्कार एज सैक्रमेंट, 16 संस्कार जो रिलीजियस सैक्रमेंट है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो संस्कार किया जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, जैसे गर्भाधान है, नामकरण है, सुमंत नयन है, बच्चे की जनेऊ करते हैं, शादी भी एक संस्कार है, तीन उसका यूज है। पहला दोषापनयनम, प्यूरिफिकेशन, जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जो उसके अंदर गलत संस्कार है उसको सप्रेस किया जा सके और जो अच्छे संस्कार है उसको फ्लोरिश करने में, आगे बढ़ने में उसको मौका दिया जाए। दूसरा है हिनांग पूर्ति। अगर कोई अच्छे संस्कार बहुत सप्रेस्ड मोड में है, उसको उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश किया जाए, और गुणाधान कुछ नए नए गुण जो आप अपने बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं वो आप उसके अंदर डालिए, बार बार डालिए। तो ये तीनों चीजों की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम संस्कार कहते हैं, और जब हम उसको रिलीजियसली करते हैं, आज रिचुअल हम करते हैं, तो हम उसको संस्कार। तो संस्कार आज आर इंटेंडेड नॉट ओनली टू डेवलप फर्दर ह्यूमन क्वालिटी बट ऑल्सो टू एलिमिनेट ऑल रेमनेंट्स ऑफ एनिमल नेचर इन ए मैन। मनुस्मृति कहता है, मनुस्मृति हमारे धर्मशास्त्र है, जैसे जन्मना जायते शूद्र, हर मनुष्य पैदा इस बाय बर्थ एवरी वन इज ए शूद्र। शूद्र मीन्स अनपॉलिश्ड, अनकल्चर, अनसिविलाइज्ड पर्सन। आपका बच्चा जो पैदा होता है कैसे पैदा होता है? में पैदा होता है, गंदा होता है, कुछ भी उठपटांग करता है, ना कोई समझ है, ना कोई सोच है, ना कोई इंटेलेक्ट है, कुछ फिजिकली भी बड़ा गंदा होता है। आप उसको साफ करते हैं, धीरे धीरे आप उसको ट्रेन करते हैं। फिजिकली आप उसको साफ करते हो, अच्छे कपड़े पहनाते हो, हाइजीनिक का ख्याल रखते हो, खाना खिलाते हो, वो भी संस्कार है। हम बेसिकली मेंटली कम काम करते हैं, इंटेलेक्चुअली उस पर कम काम करते हैं, सिवाय कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के अलावा, चलो खेलो कूदो, आगे जाकर के ऐसी पढ़ाई लिखाई करो कि खूब पैसा कमा सको, मतलब प्रोफेशनल मैथ लो, साइंस पढ़ो, ये लैंग्वेज पढ़ो। वो इसीलिए नहीं पढ़ना है कि आप अपने आप को एजुकेट करो, रिलाइज हो, इसीलिए कि यू कैन अर्न प्रोफेशनली, आप कह लीजिए डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही हमारी बेसिकली संस्कार के नाम पर होता है। पर अनजाने में और एक संस्कार आप देते हैं, उसको ध्यान दीजिए, वो होता है लैंग्वेज, आपकी भाषा। बच्चे को तो कुछ नहीं पता, आप जो बोलते हैं बच्चा उसको कॉपी करता है, जैसे बोलते हैं बच्चा उसको कॉपी करता है, बड़ा होता है उसी लैंग्वेज को बोलता है, आप उसे मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा भी बड़ा कंफ्यूज वर्ड है, माटी भाषा तो मराठी है, अंग्रेजी बोलती है मराठी स्टाइल में, पर आज बच्चा मराठी अंग्रेजी भाषा हो गया, मातृभाषा क्या है पता? बच्चा स्कूल जाता है, मैं यहाँ आने वाले हमारे बाहर से आने वाले अमेरिका में उनकी परिस्थिति, फिर उसकी इंग्लिश यहाँ के हिसाब से पॉलिश होती है, माँ बाप के हिसाब से नहीं, ज्यादा अच्छा बनता जाता है, ज्यादा बेटर बनता जाता है। 10-15 साल के बाद वो मम्मी पापा को ही बोलता है कैसी अंग्रेजी बोल, ज्यादा पॉलिश सबकी बोलता है। तो मनु कहते हैं कि जब आप उसको संस्कार करते हो, उसका दूसरा जन्म होता है, कहता है बीज। बीज का मतलब लेकिन टाइम पर दूसरी बार पैदा हो, एक माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है जो बाय बर्थ अबोध है, इनोसेंट, इग्नोरेंट। आप जो सिखाते, प्राचीन काल में सिखाने का टाइम होता था, जैसे आजकल आप 5 साल में बच्चा फर्स्ट ग्रेड में जाता है, अब तो 2.5 साल में बच्चे अब वो प्री स्कूल में जाना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देता है। तो प्राचीन काल में था कि आपकी जो प्री स्कूलिंग वो घर में करना, 7-8 साल के बाद वो स्कूल जाता था, तो उसका जो संस्कार होता था उसको कहते थे उपनयन संस्कार, वहीं उसको द्यूज कहते थे। अब इसका दोबारा जन्म हो, पहले जो था वो पशु के तरह, पशु में और बच्चे में कम अंतर होता है ना, क्योंकि समझ कम होता है, जानवर भी कहीं भी मुंह लगा देता है, बच्चे भी कुछ भी हाथ उठा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। जब पढ़ना लिखना होता है वो एक अलग टाइप का इंसान होता है, पशुओं से बेहतर होता है, तो इट इज कॉल्ड बीज, दोबारा जन्म हुआ होता है। It is a system of practice by which the bad tendencies in man are got rid of and good tendencies are inculcated. ये डिपेंड करता है कि माँ बाप उसके अंदर डालना क्या चाहते हैं। माँ बाप भी बुरा सिखाने चाहे तो कोई 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 इलाज तो नहीं। पर बहुत कम माँ बाप होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चा कुछ खराब सीखे। यकीन मानिए बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ चीजें अच्छी चीजें ना, जैसे कि मोस्टली हमारे जिस देश से हम आते हैं वहां थोड़ी ये ट्रेडिशन है कि बच्चे हमारी भाषा तो कम से कम ना अपनी भाषा, मतलब ये नहीं कि अमेरिका आने पर, वहां भी आप देखेंगे दिल्ली बम्बई बेंगलुरु हैदराबाद बहुत सारे पेरेंट्स हैं जेन्युइनली ट्राई करते हैं कि उनका बच्चा गलती से भी कोई अपनी भाषा मराठी हिंदी बंगाली अगर सीख भी गया बाई चांस ऐसा बोले कि वो लगे कि वो फॉरेनर टाइप का है कम आता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि मुझे थोड़ा हिंदी ठीक से नहीं, मतलब एक प्राउड मुझे नहीं आता है। अरे माँ बाप जेन्युइनली कोशिश करते हैं बच्चा ऐसा सीखे, क्या सीखे कि उसको अपनी भाषा नहीं आती। भारत में वहीं से बीज डाला बिल डाल देते। अब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम क्या संस्कार देते हैं, अच्छा या बुरा। कोई भाषा सीख जाने से तो कोई कोई व्यक्ति का पर्सनालिटी में कम नहीं आता, उल्टा फायदा होता है कि अगर आपको अपनी भाषा भी आता है, आपको इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच आता है, जर्मन आता है, दसों भाषाएं आती है, अच्छा है। पर पता नहीं क्यों इंडियन पेरेंट्स के अंदर ये भूत चढ़ा हुआ है तो दुनिया की सब भाषाएं सीख ले, अपनी भाषा ना सीखो, सीखो तो थोड़ा बहुत ऐसी टूटी फूटी सीखो कि लगे कि इसको आता नहीं। मतलब आता भी है तो भी थोड़ा टूटी फूटी बोलो कि मैसेज जाए कि उसको एक्चुअली नहीं आता। ये अब ये क्यों होता है सब सोच के विचार करिएगा। तो इट्स ए सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस बाय व्हिच द बैड टेंडेंसी इन अ मैन आर गॉट रीड अप एंड गुड टेंडेंसी आर इनकल्केटेड। तो सैक्रमेंट संस्कार आर ऑल्सो डन टू सेलिब्रेट वेरियस स्टेजेस एंड जर्नी ऑफ ए ह्यूमन लाइफ such as pregnancy, first outing, first learning, etc. जो संस्कार हमारे यहाँ बनाए गए गर्भाधान सीमंतोनयन पुंशवन जात कर्मा, पहले मैंने आपको 16 संस्कारों का नाम बता दूं फिर डिस्कस करूं। पहला है गर्भाधान, रिचुअल ऑफ कॉन्सेप्ट, दिस इज द फर्स्ट सैक्रमेंट, the rite of passage marking the intent of a couple to have a child. फिर आता है पुंशवन, जब माँ दो चार महीने की हो जाती है, दो तीन महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, तब ये रिचुअल किया जाता है फॉर वेलकमिंग द सोल एंड टू अश्योर दैट द इन्फेंट इज नॉट मिसकैरेज, खान पान सबका ध्यान रखना, वंस प्रेग्नेंट द मदर हैज टू टेक प्रिकॉशन फॉर द प्रोटेक्शन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द होम, जिसमें कि आप किसी तरह की टेंशन वाले चीजें नहीं करें, ऐसा कोई चीजें ना देखे ना सुने ना करे जिसमें आपको स्ट्रेस होता हो, जिसमें आपको टेंशन होता हो, फिजिकली मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम होता हो। सेकेंड द थर्ड वन इज सीमंत नयन, इट मीन्स पार्टिंग द हेयर अनवर्ड, जब ये चौथे पांचवें महीने में महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ये सेरेमनी होती है, उसका जो खास सेरेमनी है कि पति को पार्टिंग करती है, उसको बाल को कंघी करता है, पति पत्नी के बाल को कंघी करता है, मैसेज ये है कि हियर आफ्टर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ, तो ज्यादा से ज्यादा प्यार करो, मीठी बातें बोलो, उसकी ध्यान रखो, उसको किसी तरह मेंटली उसको हर्ट मत करो, क्योंकि कल तक तो वो अकेली थी, अब अकेली नहीं हो, दोनों को आप जो भी कर रहे हो उसका मैसेज अंदर भी जाता है। ये सीमंतोनयन का उद्देश्य है। बच्चा पैदा होता है जात कर्म, पैदा होने के बाद सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज जात कर्म, नामकरण, पहली बार जब आप उसका नाम देते हैं, उसका कोई नाम रखते हैं, निष्क्रमण, जब बच्चा पहली बार घर से बाहर जाता है, क्योंकि शुरू में कुछ दिन उसको अपना इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए बाहर लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि बाहर का एटमोस्फियर धूप सर्दी वगैरह चाह पाएगा ना पाएगा, जो एक दो महीने तीन महीने का थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कहते हैं निष्क्रम। अन्न प्राशन, जब पहली बार बच्चा माँ के दूध के बाद कोई बाहर का खाना खाने की जो पहली बार खिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अन्न प्राशन। उसके बाद होता है मुंडन, जब पहली बार बच्चे की बाल काटे जाते हैं, जो माँ के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वो जो बाल ग्रो करते हैं उसको एक बार पूरी तरह मुंडवाया जाता है, शेप किया जाता है, जिससे कि नए बाल आए उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं मुंडन संस्कार। फिर कर्णवेधा, कान में छेदा जाता है, बीच में तो बंद हो गया ये कर्णवेध, क्योंकि प्राचीन काल में लड़के लड़कियां दोनों ही ऑर्नामेंट पहना करते थे। पुराने जमाने के पिक्चर देखिए, स्टोरी पढ़िए, उसमें सब पहनते थे तो कान में भी वो कुंडल पहना करते थे, लड़के भी पहनते थे। और आज भी आप देखेंगे भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, राजस्थान और बहुत सारे एरिया में, जहाँ वो सिंध एरिया में, जहाँ वो पुरुष लोग भी पहना करते हैं। और आजकल तो वैसे ही मॉडर्न फैशन निकला है, किसी को भी देखो लड़के भी इधर 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 पता नहीं कहाँ कहाँ करके डालते रहे, नया फैशन। उसका जो भी पर्पस है वो आज हम डिसाइड नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद होता है उपनयन या यज्ञोपवीत, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाएगा तो उसका सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड उपनयन संस्कार, जिसमें वो तीन धागे का थ्रेड पहनता है, जनेऊ पहनता है। देन इट इज कॉल्ड वेदारंभ, जब पहली बार वो अपने धर्म शास्त्र वेद वगैरह पढ़ना शुरू करेगा उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। रिमेम्बर, संस्कार सिर्फ सैक्रमेंट नहीं होता है, सेलिब्रेशन भी होता है। फिर समावर्तन, आजकल आप करते हो, बच्चा जब पढ़ाई पूरी कर देता है, मास्टर, उसको मास्टर डिग्री तक पढ़ना था, बैचलर तक पढ़ना था, पीएचडी करना था, जब पढ़ाई पूरी हो गई, आजकल तो स्कूल कॉलेज हर जगह एक एक क्लास खत्म हुआ तो उसके ग्रेजुएट कर, उसको कहते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी, समावर्तन संस्कार। जब समावर्तन संस्कार हो जाए, मतलब आपकी पूरी पढ़ाई, जितना आपको प्रोफेशनल डिग्री के लिए पढ़ना था वो आपकी पूरी हो जाती है, वैसे तो लाइफ लॉन्ग पढ़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उसको सेलिब्रेट करते थे। नेक्स्ट स्टेप आता था शादी करना, या किसका विवाह संस्कार, वेटिंग सेरेमनी। उसके बाद आता था वानप्रस्थ, विवाह किया तो बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, पाले पोसा अपने, बच्चे अब बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो नाउ यू हैव टू रिटायर फ्रॉम योर फैमिली लाइफ, फिर प्रोफेशनल नहीं, फैमिली लाइफ से भी रिटायरमेंट लीजिए, ज्यादा आप बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर मत करिए, आप अपनी खुशी, पति पत्नी दोनों मिलके घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, धर्म कर्माइए, जो भी करिए, लोगों की भला करिए, समाज की सेवा करिए, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उसमें ज्यादा चिपकने की, अटैच होने की जरूरत नहीं, दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम, उसको भी सेलिब्रेट करिएगा, ये भी सेलिब्रेशन है कि अब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा मिला, हमारे बच्चे शादी कर लिए, उनके बच्चे हो गए, अब उनकी फैमिली अपनी है, हम अपनी लाइफ को अच्छा, ये है क्या भगवान के चरण में जाएं और समाज का भला करें। अगर ऐसा नहीं है आपकी, अगेन संस्कार नहीं है, जो मर्जी करिए, कम से कम बच्चों के लाइफ में तो इंटरफेयर मत करिए। फिर सन्यास, जब आप सोशल एक्टिविटीज में बिजी रहे, फैमिली अटैचमेंट से दूर हुए, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते करते वो भी आपकी नेचर बन गया, अब आप पूरी तरह सोशल एक्टिविटीज से अपने आप को अलग कर दें, अपने और परमात्मा के बीच के अलावा और बीच में कोई ना आए, बिल्कुल शांत होकर के एकांत में कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अकेले में एकांत में रहें, ईश्वर को पाने की कोशिश करें, भजन कीर्तन मेडिटेशन स्वाध्याय ध्यान यज्ञ जो भी करें, और पूरी तरह ईश्वर को पाने की कोशिश में डूब जाएं। और लास्ट है अंत्येष्टि, जब शरीर अब आत्मा के लिए रहने लायक नहीं है, शरीर छूट जाता है, तो वो हमारा डेथ है, मृत्यु है, उस मृत्यु को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो बॉडी को रिस्पेक्टफुली उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये जो 16 संस्कार है देवी सज्जनों, ये संस्कार सिर्फ जैसे हमने कहा कि कुछ अच्छी चीजें डालना, बुरी चीजें हटाना, इसीलिए नहीं है, इसका पर्पस ये भी है कि उस इंडिविजुअल को ये फील कराया जाए कि वो कैसे कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ। जब आप बच्चे को हर चीज, मान लीजिए वो पहली बार उसका आप नाम देते हैं, वैसे जब बिना किसी बताए भी नाम दे सकते हैं, अब नाम दे भी देते हैं। खाना खिलाते हैं पहली बार अपने आप घर में जब मन हुआ खिला दिया, पर सोचिए अगर आप उसकी हर चीज को जैसे उसकी बर्थडे को बड़े करीने से हर बार सेलिब्रेट क्यों करते हैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन फील कराने के लिए, आपका हमारे लाइफ में कितना इंपोर्टेंट है उसको ये फील कराने के लिए कि सोसाइटी में यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर वेरी मच इंपोर्टेंट इन दिस सोसाइटी। हमारे यहाँ ट्रेडिशन में बर्थडे सेलिब्रेशन करने का था नहीं, उनको पता है कि वो जो बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हो एक्चुअली आप बर्थडे से दूर होते जा रहे हो और डेथ से क्लोज होते जा रहे हो, तो इसलिए पर लाइफ को सेलिब्रेशन करने के लिए हमने दूसरे तरीके ढूंढे, दैट इज कॉल्ड संस्कार। वो संस्कार कि बच्चा पैदा हुए तो सेलिब्रेट करो, माँ भी खुश होती है, परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, उनको फील होता है कि आपने कुछ अच्छा कुछ जीत किया, बच्चे का नामकरण देते हैं तो आप अकेले भी दे सकते हैं, पर जब आप उसको सेलिब्रेट करते हैं फैमिली फ्रेंड्स वेलविशर्स को बुलाते हैं एक प्रॉपर वे में करते हैं, तो बच्चे को पैदा होने से पहले ही आपके लाइफ में आप इसको वेलकम करते जाते हो और सोसाइटी के साथ आप इसको इंट्रोड्यूस करते जाते हो। एक्नोलेजमेंट ऑफ दिस यूनिक इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस एट एवरी स्टेप ऑफ ग्रोथ हेल्प एनरिच द पर्सन लाइफ। उस पर्सन को सिर्फ आप अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते, जब अच्छा बनाने को भी आप सेलिब्रेट करते हो उसको ये फील भी कराते हो कि कैसे वो पार्ट ऑफ ए फैमिली है, पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, पार्ट ऑफ द कम्युनिटी है, पार्ट ऑफ द नेशन। वो जो फीलिंग है कि आई एम पार्ट ऑफ एवरीथिंग, उसको एग्जिस्ट अपनी एग्जिस्टेंस पर उसको प्राउड फील होता है, डिप्रेशन में नहीं जाता। सिंस ईच संस्कार मेक्स द इंडिविजुअल द फोकस ऑफ द ओकेजन। देखिए आप बाकी संस्कार तो आपकी लाइफ में होता नहीं है, आज इसका एक आधार हो जाता है, और शादी संस्कार तो जरूर होता है कम से कम, मुझे नहीं लगता है कोई यहाँ बिना शादी का वाला होगा, कोई होगा एक हजारों का। आप फील करिए आपने पुराने जब शादी आपकी हो रही थी उस दिन आपको क्या फील होगा, कितना इम्पोर्टेंस आपको मिल रहा था, सारे हजारों लोग सौ लोग सब आपको ही देख रहे थे, आपके बारे में सोच, तभी तो आप क्या करते हैं वो वीडियो बनाकर फोटो बना के क्यों सेव करने की कोशिश, आगे और थोड़े ऐसा मौका आने वाला कि आपको कोई इतना इम्पोर्टेंस थोड़े दे, देखकर खुश होते हैं। देखो स्वाभाविक हर इंसान इसीलिए था कि पूरी लाइफ के हर चीज को सेलिब्रेट किया जाए, सबके साथ किया जाए, दैट वे तो व्यक्ति को अपने बारे में भी द डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अबाउट संस्कार इज फाउंड इन वेरियस धर्मशास्त्र। तो अल्दो जैसे हमने कहा 16 संस्कार, हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मशास्त्र है, किसी में 12 है, किसी में 24 है, कहीं 18 है, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग कितने सेलिब्रेशन करो लाइफ के किसी भी पार्ट को, तो ओवरऑल जो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो 16 संस्कार के रूप में सिमट गया। आप अगर पूछेंगे, मैं एक मिनट और लेके समाप्त करता हूँ, कि चलिए हम सेलिब्रेट करेंगे फिर उसमें ये रिलीजियस क्यों, रिलीजियस का मतलब होता है कि आप जैसे हवन करते हैं या कुछ ईश्वर से रिलेटेड काम करते हैं जहां भगवान को याद करते, क्यों करें हम ठीक है सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी करेंगे, फैमिली को बुलाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, जैसे केक काट के करते हैं वैसे करेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? फर्क है, फर्क ये है कि जब आप कहते सेलिब्रेट करो तो सबको बुलाते हो आप, एक आदमी एक चीज को छोड़कर आप अपने फैमिली मेंबर को बुलाते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, आप अपने वेलेश्वर को बुलाते हो, सबको बुलाते हो, एक को छोड़ देते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है वो है तुम्हारा भगवान ईश्वर जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। हमेशा ध्यान रखिए ईश्वर तुम्हारे फैमिली का मेंबर है, तुम्हारा सोसाइटी का मेंबर है, तुम्हारे अंदर का मेंबर है, उसको छोड़ के कुछ भी करोगे हो सकता है कोई तुम्हें टेम्पररी प्लेजर मिले, अगर तुम कोई परमानेंट खुशी चाहते हो तो साथ में ईश्वर को रखो, ये तुम्हारा ग्रैटिट्यूड भी है ईश्वर के प्रति, और ये तुम्हारे स्मार्टनेस भी है कि तुम्हें दुख में परेशानी में और कोई साथ ना दे दे, वो ईश्वर की जो प्रति तुम्हारी श्रद्धा है वो तुम्हें विल पावर को स्ट्रांग करता है। इसीलिए वो जो हमारा फैमिली का एक इनविजिबल पार्ट है, अदृश्य अंश है, उसको भी हम साथ में जोड़े रखें। इसीलिए हम रिलीजियस पार्ट को करते हैं, पूजा करें, हवन करें, जो करें, ईश्वर को भी हम अपने साथ जोड़ के चले हमारे सुख में दुख। इसीलिए हम उसको रिलीजियस बनाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर को ना छोड़ दे। आपकी शराब की पार्टी में तो ईश्वर की आप याद आएगी नहीं, आपकी केक की पार्टी में भी ईश्वर की याद आएगी नहीं, कम से कम रिलीजियस पार्टी में तो थोड़ी बहुत आपको ईश्वर को याद आएगी, उसको तो मत भूलिए जीवन में। यही बेसिकली हमारे संस्कारों का उद्देश्य था कि व्यक्ति के लाइफ को सेलिब्रेट किया जाए, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें डाला जाए और सबके साथ शेयर किया जाए। और एक मिनट लूंगा उसे लेट हो रहा है, पर कंक्लूड करने के लिए एक बात करके खत्म कर। आप कहेंगे मेरा छोटा सा बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, आप जात कर्म संस्कार करते हो, अभी तो दो दिन हुआ पैदा हुए, 1 दिन हुआ, उसको क्या पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छी चीजें कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, जब आप बच्चों के लिए संस्कार करते हैं, इसका अर्थ नहीं कि आप बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर, बच्चा अच्छा है या बुरा है गजब टीजर हर प्यारे अंकल आंटी ग्रैंड ग्रैंड धरना बच्चे को नहीं है। 1 महीने का बच्चा क्या सुधर, क्या अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, धरना तो माँ बाप को है। संस्कार के माध्यम से माँ बाप अपने एटीट्यूड को चेंज करे अगर वो एक बच्चा पालना चाहते हैं ठीक से। इसीलिए कंसेप्शन से क्यों शुरू होता है कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही संस्कार शुरू हो, इसीलिए नहीं कि कोई भगवान कृपा करके आपके बच्चे को अच्छा बनाया। माँ बाप ठीक से लाइफ को जिए, लाइफस्टाइल को ठीक रखें, अच्छा सोच रखें, अच्छा विचार रखें, अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा बने। इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स। पेरेंट्स अच्छा बनेंगे, जो पेरेंट्स सीखेंगे, जैसा बिहेव करेंगे वैसा बच्चे के प्रति संस्कार चलता जाएगा, इनडायरेक्टली चलता जाएगा और बच्चा उस तरह बनता जाएगा। ये हेल्प करता है। इसीलिए नहीं कि बचपन में बच्चा कुछ हवन करने से, पूजा पाठ करने से, अच्छी बात बोलने से, अच्छी चीजें डालने से उसमें कुछ फर्क आए। अननोइंगली जितना फर्क आएगा पाएगा, पर 99% तो पेरेंट्स को सुधरने की जरूरत होती है, उनको केयरफुल होने की जरूरत होती है अगर वो एक अच्छा बच्चा को पालना चाहते। इट्स ऑल अबाउट पेरेंट एंड द सर्च, जो उसके एनवायरमेंट है बच्चे का उनको ठीक कर। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, इसको कंक्लूड करना था।